ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमां देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जाय उदीरहे नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।
हरे कृष्णा। श्रीमद्भागवतम, हाँ, गंगा अवतार, तो हम लोग श्लोक पढ़ेंगे। अन्ये च नदा नद्यश्च वर्षे वर्षे सन्ति बहुशो मेवार्धिगिरिदुहितर शतशः अन्ये अन्य अनेक च भी नदा नदियां नद्यः छोटी नदियां च तथा वर्षे वर्षे प्रत्येक प्रदेश में सन्ति है बहुशः अनेक प्रकार की मेरु आदि गिरि दुहितरह मेरु आदि पर्वतों की पुत्रियां शतशः सैकड़ों। अनुवाद तथा तात्पर्य शिल ऐसी भक्तिदान्त संस्कृत की, तो अगला श्लोक भी लेंगे इसका अनुवाद। मेरु पर्वत की चोटी से अन्य अनेक छोटी तथा बड़ी नदियां निकलती है। ये नदियां पर्वत की पुत्रियों के तुल्य है और वे सैकड़ों धाराओं में विभिन्न भूप्रदेशों में बहती है। श्लोक क्रमांक 11। तत्रापि भरतमेव वर्ष कर्म क्षेत्रमन्यष्टः वर्षाणि स्वर्गाणां पुण्ययशोपभोग्यस्थानादिभिः भौमानि स्वर्गपदानि व्यपदिंशति। अनुवाद। नवो वर्षों में से भरतवर्ष नामक भूभाग कर्म क्षेत्र माना जाता है। विद्वान तथा संत जनों का 8 भूप्रदेशों में अपने शेष पुण्य कर्मों का फल भोगते हैं। तात्पर्य, स्वर्ग के भोग स्थानों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। अपार्थिव स्वर्गलोक, भौम स्वर्गलोक और बिल स्वर्गलोक, जो निम्नतर भागों में पाए जाते हैं। इन तीनों श्रेणियों में से भौम स्वर्गलोक भारतवर्ष के अतिरिक्त 8 वर्षों के रूप में है। भगवद गीता 9वां अध्याय श्लोक क्रमांक 21 में श्री कृष्ण कहते हैं, क्षीणे पुण्यमर्त्य लोकम विशन्ति, पुण्यों के क्षय होने पर स्वर्ग में वास करने वाले व्यक्ति इस पृथ्वी पर लौट आते हैं। इस प्रकार वे पहले स्वर्गलोक पहुंचते हैं और पुनः च्युत होकर पृथ्वी पर आते हैं। यह क्रिया ब्रह्मांड भ्रमण अर्थात ब्रह्मांड भर में ऊपर नीचे भ्रमण करना कहलाती है। जो बुद्धिमान है वे ऊपर और नीचे की इस आवगमन में नहीं पड़ते, वे भगवान की सेवा करते हुए अंत में ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर दिव्य लोग में प्रवेश करते हैं। फिर वे वैकुंठ लोग या इसमें भी ऊपर स्थित कृष्ण लोग गोलोक वृंदावन में अवस्थित हो जाते हैं। भक्त कभी भी स्वर्ग लोक तथा तक उठने और फिर वहां से नीचे गिरने के बंधन में नहीं पड़ते। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, यही रूपे ब्रह्मांड भ्रमिते कोण भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड भर में चक्कर लगाने वाले समस्त जीवात्माओं में जो सर्वाधिक भाग्यवान है वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि के संपर्क में आता है और सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त करता है। जो निष्ठा से श्री कृष्ण की कृपा के लिए लालायित रहते हैं उन्हें ऐसा गुरु प्राप्त होता है जो श्री कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है। मनोकल्पना करने वाले मायावादी तथा कर्मों के फल की इच्छा रखने वाले कर्मी गुरु बन नहीं सकते। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकय चक्षुरुन्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो अभी कल जन्माष्टमी है तो आज अब हमने ये पढ़ा गंगा जी का जो है अवतार, तो इस अध्याय में उल्लेख आता है कि किस प्रकार गंगा जी जो है स्वर्ग से अलग अलग लोगों से होके भारतवर्ष में आती है। तो गंगा जी के अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। तो संक्षिप्त में प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है तो ये स्वर्ग नर्क के चक्कर में नहीं रहते, वो क्या करते हैं भगवान के प्रतिनिधियों का सीधा वो क्या करते हैं उनका आश्रय लेते हैं, तो उन्हें इस ब्रह्मांड में फिर से चक्कर नहीं काटना पड़ता। तो एक बार प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ अमेरिका में एक बगीचे में भ्रमण कर रहे थे, तो एक शिष्य ने प्रभुपाद जी से कहा, प्रभुपाद जी ये हमारा कितना अहोभाग्य है कि आपसे हम मिले, ये तो कोई संभव नहीं था, आप अमेरिका आए और आपने हमें बिल्कुल गंदगी से बाहर उठाया। तो प्रभुपाद जी ने कहा, चलो ये एक चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, लेकिन आपको इस कृपा को बनाए रखना होगा और इस कृपा को आपको दूसरों को देना होगा। तो आज हमें जो है आज खास करके गर्ग संहिता में कृष्ण भगवान ने जो वृंदावन लीला में जिन असुरों का वध किया था तो उन असुरों के जो अनर्थ है तो उनके इसमें बारे में भक्तिनोद ठाकुर ने एक किताब में कुछ संक्षिप्त वर्णन दिया है जिसका नाम है चैतन्य शिक्षामृत। तो उसी किताब पर आधारित आज हम यहाँ यानी ये जो असुर कौन थे, वो पूर्व जन्म में उनका क्या नाम था, किस कारण उनको असुर बनना पड़ा और इनके प्रमुख अनर्थ क्या है, तो इनको सिर्फ आपको आउटलाइन देंगे। अगर आप कृष्णा बुक पढ़ेंगे तो उसमें कथाओं को पढ़ के इसमें का आप पूरा आनंद उठा सकते हैं। तो जैसे आप देखते हैं कि भक्तिनोद ठाकुर जी ने 21 लीलाओं का वर्णन किया है, तो आज इतना समय नहीं कि मैं जो है दोपहर को 1 बजे तक तो कोई बैठेगा नहीं इधर, तो मैं प्रयास करूंगा अगले 45 मिनट में जो भी बताने का यथाशक्ति। तो भक्तिनोद ठाकुर बताते हैं कि ये असुर है हमारे भक्ति मार्ग में आने वाले क्या है अनर्थ है, तो हमें क्या करना चाहिए, इनका वध करना चाहिए। क्या करना चाहिए, वध। वो किस प्रकार करना चाहिए, तो वो भगवद गीता में कृष्ण भगवान बताते हैं कि नरक में जाने वाले 3 रास्ते हैं, इस नरक के 3 द्वार है काम क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। आत्मा का पतन का अर्थ होता है कि आत्मा को तुच्छ योनि में जन्म लेना होता है। आत्महा का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति आत्मा का हनन कर रहा है। तो आप जैसे देखते हैं कृष्ण भगवान गीता में 15वें अध्याय में बताते हैं ममय अंश जीवो लोके, तो जितने भी जीवात्मा है भौतिक जगत में 84 लाख योनि में, तो हम लोग भगवान के पार्षद है, लेकिन हमारे मन के साथ हमारे 5 इंद्रिय है, आंख नाक जीवा कान और त्वचा। तो इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, घोर संघर्ष कर रहे हैं। तो वास्तविक में हम देखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं ये हमारे 6 जो बाधाएं हैं। कंस ने देवकी के जो 6 पुत्रों का वध किया था, पहले जो 6 पुत्र थे तो उनको षड गर्भ कहा जाता है, वो है काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि हमारे ये प्रमुख 6 अनर्थ है। तो इन 6 अनर्थों से हमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि भक्ति मार्ग में कम से कम अनर्थ निवृत्ति के स्तर पर आना चाहिए। तो एक बार प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को कह रहे थे कि आप कम से कम 70% तक अपनी प्योरिटी ले आओ। पहले तो उन्होंने कहा था 100%, सबके सर नीचे थे, तो 90 कहा, 80 कहा, बाद में कहा ठीक है 70 से कम नहीं है। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी ने कहा कि भगवत धाम की पिछले दरवाजे की चाबी मेरे पास है, मैं पिछले दरवाजे से आपको अंदर ले लूंगा। तो आप देखते हैं कि भक्ति रसामृत सिंधु में, आज इतना समय नहीं कि मैं पूरा डिटेल बता सकता हूं, तो भगवान की जो लीलाएं हैं तो 3 प्रकार की प्रमुख लीलाएं हैं। जो भगवान की नित्य लीला चल रही है गोलोक वृंदावन में, वो नित्य लीला है। जिस ब्रह्मांड में भगवान की लीला चलती है उसको कहते हैं प्रकट लीला। तो प्रकट लीला में और एक लीला होती है, उसको कहते हैं नैमित्तिक लीला। तो ये नैमित्तिक लीला में भगवान असुरों का वध करते हैं, गिरिराज धारण करते हैं, फिर मथुरा द्वारका गमन करते हैं। तो ये नैमित्तिक लीला में आता है। तो नैमित्तिक लीला करने के कुछ कारण है, भगवान ये नैमित्तिक लीला क्यों करते हैं, कुछ टाइम पास करने के लिए नहीं, उसके कुछ प्रमुख कारण है। तो हमारे आचार्य बताते हैं साधकों को महत्वपूर्ण शिक्षा देना, साधकों को महत्वपूर्ण शिक्षा देना, कुछ महत्वपूर्ण जो है कारणवश, फिर भक्ति के महत्ता को सिद्ध करके करने के हेतु, फिर बद्ध जीवों के हृदय को आकर्षित करने के लिए, भगवान हमें आकर्षित करने के लिए करते हैं, फिर भक्तों के साथ दिव्य प्रेम भक्ति का आदान प्रदान करने हेतु, फिर अचिंत्य शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए। भगवान जो है आप देखते हैं कि भगवान ने जितने भी असुरों का वध किया तो भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया नहीं। कोई बता सकता है कि भगवान ने अपने आप को, वृंदावन की एक ऐसी लीला है एक असुर को मारने के लिए कृष्ण भगवान ने अपने शरीर को बहुत बड़ा किया था, कोई बता सकता है? अरे वाह ग्रेट, हाँ चलो ग्रेट। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि हाँ कुछ टाइम प्लेस सरकमस्टेंस, कृष्ण भगवान ने वहां अगासुर का वध किया था, लेकिन अगासुर जो है क्योंकि उसकी चेतना पवित्र हो गई, तो इस प्रकार आप देखते हैं कि ये मुख्य कारण है। तो जब भी हम लोग भक्ति में आते हैं तो भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि जब भी हमें गुरु के द्वारा दीक्षा मिलती है तो हमारे भक्ति लता बीज को हमें श्रवण और कीर्तन के द्वारा सावधानी से उसको पोषण पालन पोषण करना चाहिए। तो भक्ति में सबका पहले उत्साह रहता है कि नहीं, फिर कुछ समय के बाद में हम देखते हैं धीरे धीरे क्या होता है, कुछ सालों के बाद में समस्याएं खड़ी होती है, जैसे शादी, पहले सब कुशल मंगल है कि नहीं, बाद में तू और मैं। तो भक्ति में भी ये कारण क्यों है, क्योंकि हम लोग यांत्रिक भक्ति करते, यांत्रिक समझते कि जैसे कोई जप करने के लिए बैठा है लेकिन वो टीवी देख रहा है कि नहीं, हाँ। तो ये हमारी मल्टीटास्किंग कहते हैं, कुकिंग भी करो एक हाथ में माला पकड़ो। तो मैं जब भी बम्बई में था, हमारे एक ड्राइवर थे, तो जब ये हम पूना जाते थे तो गाड़ी चलाता था एक हाथ में बीड बैग एक हाथ में स्टेयरिंग, वो कहता था अरे वाह मेरा यार ड्राइविंग भी हो गया जपा भी हो गया। तो ऐसे नहीं होता है, तो हमें यानी जपा करना है तो ठीक एक जगह बैठ के ध्यान से, अगर बैठ के नहीं कर सकते तो चल के कर सकते हैं। फिर थोड़े भक्त भक्ति में आने के पश्चात अन्य दूसरे लोगों के पास जाते हैं भागवत श्रवण करने के लिए, तो उनके ऊपर भी उसका भी बुरा असर होता है। वो क्या होता है, वे हमें भक्ति से दिशा भूल कराते हैं। अगर हम लोग बाहर श्रवण करने जाएंगे तो उसका क्या होगा, विपरीत परिणाम सुन लो। भक्ति को धर्म अर्थ काम मोक्ष तक केवल सीमित रखते हैं। और ज्यादा करके रासलीला के ऊपर ही कथा को केंद्रित करते हैं, एक आध्यात्मिक मनोरंजन। आजकल भागवत सप्ताह 7 दिन का, अलग अलग 7 दिन का नौटंकी करके दिखाते हैं। उसके बाद में भौतिक जगत में सुखी रहने की झूठी आशाएं दिलाते हैं, फिर भगवान के असली रूप को निराकार, बाद में कहते हैं कि हमें भगवान के साथ एक होना है, गलत। फिर श्रोताओं के में कोई किसी प्रकार का हृदय परिवर्तन नहीं होता। तो जहां भी भागवत कथाएं होती है, आप देखो कोई उसमें से कहता नहीं कि चलो गुरुजी हम अभी आपके चेले बन जाते, नहीं, किसी का परिवर्तन नहीं होता है। तो ये इसका दुष्परिणाम है। तो काफी जगह भागवतम में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि आज ऐसे एक जो है एक लोगों का एक पेशा बन गया है भागवत कथा करने का, अपना घर परिवार चलने के लिए, चलाने के लिए, तो ये गलत है। तो लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं नैमि शरण में जो ऋषि जो श्रवण कर रहे थे और सूत गोस्वामी जो बता रहे थे, अगर ऐसे जोड़ी अच्छी हो तो उसमें से क्या हो सकता है, तो उनको लाभ मिल सकता है। तो भक्ति में हमारा उत्साह इसके कारण क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है, क्योंकि वहां मन अट्रैक्ट हो जाता है, यहाँ भागवत क्लास है तो वहां दूसरी जगह जाके बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि काफी लोग फिर एक दूसरे का अपराध करने लगते हैं। हम तो आए हैं भक्ति में भक्ति करने के लिए, हम ये देखने नहीं आए कि कौन क्या कर रहा है। तो हमारा कार्य होना चाहिए कि मैं भक्ति में क्यों आया था। तो इस प्रकार अगर देखते हैं कि भक्ति के ऐसे प्रमुख 9 स्तर हैं, अगर हमें भक्ति में स्थिर होना है, प्रेम भक्ति में, तो ये रूप गोस्वामी बताते हैं, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया। तो सबसे पहले है श्रद्धा, भक्ति मार्ग में पूरा विश्वास रखना, साधु संग निरंतर भक्तों का संग करना, भजन क्रिया आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन द्वारा भक्तिमय सेवा, फिर क्या होगा अनर्थ निवृत्ति, भौतिक दूषणों से संपूर्ण मुक्ति, फिर हमारी निष्ठा, भक्ति मार्ग में स्थिरता रखना। स्थिरता का मतलब है डेली मंगल आरती भागवत श्रवण करना, इसको कहते हैं स्थिरता। फिर हमारी भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ेगी, भगवान के प्रति जो है स्वाभाविक लगाव। फिर हम लोग भाव भक्ति में आ जाएंगे, भगवान के दिव्य प्रेम की प्राथमिक अवस्था, उसके पश्चात लास्ट में प्रेम भक्ति में स्थित हो जाएंगे, जीवन का परमोच्चता का परिपूर्ण जो है ये स्तर है। तो जब भी इस स्तर पर सर पे कोई स्थित हो जाएगा तो वो फिर उसका भक्ति से कभी पतन नहीं होगा। तो आज आपको हम, जैसे मैंने बताया कि वृंदावन की इन लीलाओं में जो असुर थे, पहले मैं उनका सिर्फ अनर्थ बताऊंगा, तो आज इतना समय नहीं है कि हम पूरा डिटेल में जाएं। तो पूतना, आप देखते हैं कि जब भी कृष्ण भगवान, कोई बताते 1 महीने के थे, कोई बताते 7 दिन, अभी आप लोग निर्णय कर लो। तो ऐसे आप देखते हैं कि कृष्ण भगवान जब भी छोटे बालक थे, 1 महीने का या 1 हफ्ते का जो बालक होता है बिल्कुल वो निस्साय होता है। तो पूतना आई थी अपना वेश बदलकर, तो आप देखते कि पूतना का जो अनर्थ है वो है ढोंगी गुरु। ढोंगी है ना, जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं लोभी गुरु चंडाल चेला, नरक में जाएंगे। हाँ, आगे आप लोग जानते हैं। तो ये पूतना आई थी ढोंगी गुरु के रूप में, फिर एक व्यक्ति का अपने दूषित मन का प्रतीक। तो हमारा मन बहुत दूषित है, इसमें प्रतिदिन 10 से 15 हजार विचार आते हैं, ये हमारा दूषित मन है। तो ये पूतना का अनर्थ है। तो आज ये कथा करने का अर्थ ये है कि हमें ये देखना चाहिए भाई हमारे अंदर कितना अनर्थ है। अभी हर एक व्यक्ति अपना अनर्थ से वो क्या है जानता है कि मेरे अंदर कितना अनर्थ है, भगवान किसी को बताते नहीं, अच्छी बात है कि नहीं। नहीं तो हमारे पड़ोसी लोग कहते, अरे आप जानते नहीं ये कैसा है वो कैसा है, लेकिन कम से कम भगवान किसी को नहीं बताते अपने पड़ोसी व्यक्तियों को, अरे देखो ये ऐसा करता है। तो अभी हमें भगवान यहाँ संकेत दे रहे कि क्या है, क्या कौन से असुर है। जैसे टीचर, एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो अगर कुछ हमें आता नहीं है तो टीचर क्या कहते हैं, एक संकेत देते हैं। तो भगवान ने जो भी वृंदावन की लीलाएं की है, तो कृष्ण और बलराम जी इन असुरों का वध करके हमें कुछ संकेत दे रहे। वृंदावन में गांव है संकेत, संकेत गांव, 1000 वनों में एक वन है संकेत वन। तो वहां राधा कृष्ण संकेत करके मिलते थे, शकटासुर, तो बुरी आदतों को अपने साथ लेकर चलना वह आलसीपन का अनर्थ। अभी शकट का मतलब है बैलगाड़ी, बैलों को कभी कभी हाँकना पड़ता है, बैल भी आलसी होते हैं, कोई कोई बैल है कि नहीं। और बुरी आदतों को लेकर चलना, अब देखते हैं कि भक्ति में आने के बाद भी थोड़े लोगों को अपनी बुरी आदत को छोड़ना बड़ा मुश्किल पड़ता है, तो ये शकटासुर जो है ये उसकी जो है अनर्थ बताए जाते हैं। फिर तृणाव्रत, भौतिक ज्ञान द्वारा निर्माण हुए अहंकार और उसके उपरांत तार्किक तत्व ज्ञान का जो है जन्म होना। तो आजकल हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान तो नहीं ले रहे, भौतिक ज्ञान, तो जैसे भौतिक ज्ञान मिलता है तो फिर उससे तर्क करके करने लगते हैं, तर्क, तर्को प्रतिष्ठा आशितोयो भिन्नम। तो आजकल के बहुत सारे बच्चे कहते हैं तर्क करने लगते हैं। एक बार हमारे कोई भक्त बंबई IIT में लेक्चर दे रहे थे, वो नरक के बारे में बता रहे थे, तो एक लड़का पूछ रहा था, प्रभु जी वहां कौन से ब्रांड का ऑयल यूज होता है, कौन से ब्रांड का ऑयल फ्राइंग के लिए यूज करते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जो अपना तर्क लगाने वाले हैं। फिर आगे नल कुबेर व मणिग्रीव, खूब संपत्ति व ऐश्वर्य से मदांध होने के कारण इतरों को अति तुच्छ देखना। तो कुंती महारानी बताती है हमारे चार अनर्थ है, वो है ऊंचे कुल में जन्म, ऊंचा शिक्षण, भौतिक सुंदरता और धन, ये इससे आदमी क्या हो जाता है, अंधा हो जाता है। फिर वत्सासुर, बालिश वृत्तियां, लोभ व झगड़ालू स्वभाव के लक्षण। अभी आप देखते हैं कि गाय का बछड़ा अगर आप उसको खुला छोड़ दो वो भागता रहेगा और वो दूध पीने के लिए बड़ा लोभी होता है। कभी कभी अगर आप गाय के बछड़े को ज्यादा दूध पिला दो तो उसको लूज मोशन हो जाता है। और आप देखते हैं कि वो बंदर का बछड़ा हो या कुत्ते का पिल्ला हो, ये बछड़े जो छोटे बच्चे होते हैं झगड़ा करने में बड़े ये रहते हैं, माहिर रहते हैं। तो ये जो है वत्सासुर का अनर्थ है। फिर आगे बकासुर, कपट नीति, धोखेबाजी व भ्रष्ट आचरण। अभी बकासुर आप देखते हैं कि ये जो बगला होता है बिल्कुल सफेद, एक टांग पर खड़ा रहता है, लेकिन उसके मन में क्या होता है, मछली पकड़ना है कि नहीं, तो ये धोखेबाजी और भ्रष्ट आचरण। फिर आगे अघासुर, अन्यों के प्रति क्रूरता व हिंसक वृत्तियों का स्वभाव। तो ये एक सांप है वो क्रूर माना जाता है, लेकिन चाणक्य पंडित क्या बताते हैं, इस सांप को जड़ी बूटी या मंत्रों से वशीकरण कर सकते हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर है मनुष्य, इसके लिए कोई जड़ी बूटी या दवाई नहीं है। आगे ब्रह्म हिमोन लीला, यहां कोई असुर का वध नहीं हुआ, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं इस लीला के द्वारा भगवान ने अपने तीन कार्य कर लिए। वो है जो गोपियां वात्सल्य भाव में थी वो चाहती थी कृष्ण भगवान को दूध पिलाना, और गाय वो भी दूध पिलाना चाहती थी कृष्ण भगवान को, और ऐसे गोपियां थी जिन्होंने कात्यायनी व्रत किया था, उनकी इच्छा थी कि कृष्ण उनके पति बने, उन्होंने कात्यायन से प्रार्थना की थी। तो ब्रह्म विमोन लीला से भगवान ने इन तीन कार्यों को अपना निपट लिया। तो इसमें हम देखते हैं कि भौतिक कृत्य व तार्किक ज्ञान का प्रदर्शन, तो हम लोग कभी कभी अपना तर्क लगाते हैं, तो ब्रह्मा जी भी तर्क लगा रहे थे। फिर धेनु का सुर, भौतिकवादी तर्क बुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव। आप देखते हैं कि धेनु का सुर का मतलब है गधा, अभी आप देखते हैं कि गधा का मतलब है गलत धारणा। इस भौतिक जगत में आप देखते हैं कि जैसे संस्कृत में गधे को एक अच्छा नाम दिया है, किसी को मालूम है संस्कृत में गधे का नाम क्या होता है? हाँ जी, संस्कृत में गधे का नाम कोई बता सकता है, यानी सुंदर नाम? नहीं, ये गंधर्व बोल रहे हैं। नहीं नहीं, ऋतु, छह ऋतु में से एक नाम है, वैशाख आनंद। क्या नाम है? हाँ, वैशाख आनंद, गधे का नाम है वैशाख आनंद। क्योंकि गर्मी में क्या होता है, सब जगह घास सूख जाता है और गधे को लगता है अरे वाह मैंने बहुत घास खा लिया, लेकिन जब भी वर्षा होती है सब जगह हरा भरा होता है तो उसको बड़ा टेंशन होता है, अरे मैंने तो कुछ खाया नहीं। तो गधे का अर्थ प्रभुपाद जी बताते हैं वो पूरे घर परिवार समाज के लिए कार्य करता है, खुद तो कुछ उसका आनंद नहीं लेता है, तो इसलिए उसको कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव। तो प्रभुपाद जी बताते हैं 99% आज इस दुनिया के लोग क्या है, वो गधे हैं, वो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। आगे कालिया, अन्यों के प्रति क्रूरता व विश्वासघात की प्रवृत्तियां। कालिया क्या करता था, गरुड़ जी के लिए जो बलि रखी जाती थी वो खुद खा जाता था। तो सांप क्या है कि सांप के ऊपर आप कभी विश्वास नहीं कर सकते, तो विश्वासघात की प्रवृत्तियां। फिर वृंदावन के जो है इसमें वनों में दो बार आग लगी थी, वो भी कंस के असुरों ने लगाई थी। पहली जो है दावानी जो है उसका बताया था कि भक्तों के बीच में झगड़े और मतभेद। अभी हम देखते हैं कि हमारे अंदर भी बहुत सारे मतभेद और झगड़े होते हैं, अभी ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आगे प्रलंबासुर, खुद को मान सम्मान की कामना, दो प्रकार की काम वासना। तो प्रलंबासुर का अनर्थ क्या है कि भौतिक काम वासनाएं और सूक्ष्म काम वासनाएं। सूक्ष्म है पूजा लाभ प्रतिष्ठा, और भौतिक में क्या है अपने शरीर को जो चाहिए वो देना। तो ये प्रलंबासुर के अनर्थ है। और उसके पश्चात नंद महाराज का वरुण देव से सहचरों से अपहरण। तो इसमें भगवान ने क्या किया था कि नंद महाराज को रिहा करके लाए थे। एक बार नंद महाराज सुबह सुबह नहाने के लिए गए थे यमुना जी में, तो ये वरुण देव के पार्षद उनको ले गए थे। तो इसमें भक्ति में वैष्णव द्वारा आध्यात्मिक आचरण करने का प्रयास। तो हम देखते हैं कि वृंदावन में ऐसे कुछ मंदिर है जिन मंदिरों में भगवान को क्या भोग लाया जाता है, भांग कहीं इसमें वो ये भी रखते चिल्लम, पता नहीं क्या क्या भगवान को भोग लगाते। तो ये है इसका अनर्थ। फिर आगे याज्ञिक ब्राह्मणों की गलती का सुधार। तो जो याज्ञिक ब्राह्मण जो थे तो वर्णाश्रम के अनुसार उनको लगता था कि हमसे बढ़कर किसी का दिमाग है नहीं। और ये उसमें वास्तविक में हम देखते हैं कृष्ण भगवान हमें ये बताते हैं कि शुद्ध भक्ति के लिए हमें वर्णाश्रम के ऊंचे स्तर में कोई जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक साधारण व्यक्ति के रूप में भी हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो जो याज्ञिक ब्राह्मण थे उनके पत्नियों के द्वारा कृष्ण भगवान ने चार प्रकार का प्रसाद ग्रहण किया था। तो ये वो लीला है। उसके पश्चात इंद्र का गर्वहरण। अभी आप देखते हैं कि देवताओं की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, स्वयं भगवत्ता का घमंड और मिथ्या अहंकार करना। तो अभी आप देखते हैं कि इंद्र भी भगवान के एक पार्षद है, 33 कोटि देवताओं के प्रमुख है, लेकिन जब ये भक्त उनके अंदर कुछ अहंकार आ जाता है तो भगवान क्या करते हैं उनका थोड़ा हवा निकाल देते हैं। तो अभी इंद्र का भी गर्व आप देखते हैं एक पहाड़ जैसे था। तो यहां इस लीला से भगवान हमें बता रहे कि हमें देवी देवताओं की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है और हमें कभी भी गर्व नहीं करना चाहिए। आगे जंगल की दूसरी अग्नि। तो धार्मिक मूल सिद्धांतों को भंग करना और नास्तिकों के साथ मतभेद। तो काफी ऐसे भी लोग होते हैं जो हमारे धार्मिक मूल सिद्धांत है उसमें अलग अलग मतभेद रखते हैं, तो इसमें हमें एक मत होना चाहिए। तो ये दूसरे अग्नि का ये जो है उल्लेख दिया जाता है। उसके बाद में नंद महाराज की सर्प से मुक्ति। तो एक बार नंद महाराज अंबिका वन गए थे यानी शिवरात्रि मनाने के लिए, तो वहां एक सांप उनको निगलने का प्रयास कर रहा था। तो कृष्ण भगवान ने उसको जैसे पैर से हटाया सांप को, तो सांप जो है वो गंधर्व था, वो अपने पूर्व रूप में आ गया। तो मायावादियों के द्वारा निगले हुए सत्य की पुनर्स्थापना करना। तो प्रभुपाद जी अपने भक्तों को कहते थे कि हमें ये लोगों को सिद्ध करके दिखाना है कि कृष्ण भगवान है, भगवान का धाम है। तो प्रभुपाद जी कहते थे भौतिक जगत में सब जगह मायावाद का प्रभाव है, तो इसके कारण उन्होंने भगवान के जो साकार रूप को निराकार बना के रखा है। तो भक्तों को ये करके दिखाना है, चैलेंज करके भगवान है ये सिद्ध करके दिखाना है। फिर शंखचूड़, भक्ति में जो है भक्ति के नाम पर नाम प्रतिष्ठा इंद्र भोग की अभिलाषा रखना। तो शंखचूड़ जो है वो गोपियों को लेके भाग रहा था, तो उस वक्त जो है कृष्ण भगवान ने उसका वध किया था। फिर अरिष्टासुर, भक्ति कपटी धर्मवादी लोगों का अहंकार जो भक्ति को दूर करता है। तो अरिष्टासुर एक जो है बैल के रूप में आया था, तो उस वक्त भगवान ने ये राधा कुंड के पास जो है जगह है, एक गांव है, तो वहां भगवान ने उसका वध किया था। फिर उसके पश्चात आता है केशी, हाँ, एक जो है एक घोड़े के रूप में आया था, स्वयं को एक प्रगत भक्त व गुरु घोषित करना। तो ऐसे भी लोग हैं जो भक्ति में आते हैं, किसी गुरु से दीक्षा ले लेते हैं, बाद में वो अपने आप को एक गुरु घोषित कर देते हैं और कहते हैं आप हमसे दीक्षा ले लो, चार माला करो, ऐसे भी हैं। अभी हम बताएंगे ज्यादा डिटेल में। फिर योमासुर, कृष्ण भगवान ने जो आखिरी असुर का जो वध किया था वृंदावन में, वो थे योमासुर। उसके पश्चात कृष्ण भगवान जो है कंस का वध करने के लिए मथुरा गए थे। तो चोर व लुच्चो लोगों की संगति, और जो स्वयं को अवतार घोषित करता है, तो इस दुनिया में थोड़े ऐसे भी लोग हैं अपने आप को अवतार ही मानते हैं, और थोड़े ऐसे भी होते हैं जो चोर लुच्चे उनका संगति रखते हैं। तो इस प्रकार ये 21 प्रसंग है जिनका अनर्थ है वो भक्तिनोद ठाकुर जी ने चैतन्य शिक्षामृत में इसका उल्लेख किया है संक्षिप्त में। अभी इनका सबका कृष्ण भगवान ने उद्धार किया था, तो अभी मैं संक्षिप्त में ही बताऊंगा कि पिछले जन्म में ये लोग क्या थे, इनका यानी कहानी आपको हम संक्षिप्त में बताते हैं। जो पूतना जो थी, बताया जाता है कि बलि महाराज की कोई बताते लड़की थी, कोई बताते वो उनकी बहन थी, तो उसका नाम था रत्नमाला। तो जब ही वामन देव वहां यज्ञ में आए थे, तो वामन देव 3 फीट के थे, बहुत सुंदर दिखने में, बड़े सुंदर थे, तो उसके मन में एक मनोकामना हुई कि इससे दूध पिलाना चाहिए। लेकिन जब ही वामन देव ने अपना सच्चा रूप धारण किया, तो उसने सोचा इसको जहर पिलाना चाहिए। तो उसने दो क्या किए, मनोरथ किए थे, तो भगवान ने उसके दोनों मनोरथ पूरे किए। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि भगवान जिन असुरों का वध करते हैं, तो प्रभुपा जी बताते हैं कि भगवान उनको अच्छी गति देते हैं। तो पूतना को एक दाई की गति मिली। पूतना हम देखते हैं कि कपट मन से आई थी, लेकिन फिर भी भगवान ने उससे एक अच्छी गति दी। आगे शकटासुर, तो ऐसे बताया जाता है कि गर्ग संहिता के अनुसार हिरण्याक्ष का पुत्र था, उसका नाम था उत्कच। लोमस ऋषि के आश्रम में वहां बड़ा उत्पात मचा रहा था, सब पेड़ पौधे तोड़ रहा था। तो लोमस ऋषि ने कहा, अरे वाह, तुम तो ये बड़े भवंडर के माफी व्यवहार करते हो, तुम एक सूक्ष्म जीवी बन जाओ और जो करना है करो। तो इस प्रकार एक शक्टासुर जो है वो एक सूक्ष्म जीवी बन गया, और कृष्ण भगवान ने बस अपना थोड़ा पैर का अंगूठा लगा के उसका उद्धार कर दिया। उसके पश्चात तृणाव्रत, पांडु देश के राजा थे, उसका नाम था सहस्राक्ष। रेवा नदी के किनारे 1000 स्त्रियों के साथ वो रमण कर रहे थे, लेकिन दुर्वास मुनि को दुर्लक्ष किया। शास्त्रों में बताया जाता है कि 4 चीजों को कभी दुर्लक्ष नहीं करना चाहिए, वो है अग्नि, जल, भगवान के विग्रह। भगवान उसमें 64 अपराध माने जाते हैं, जप करने में तो 10 अपराध है, लेकिन उसमें 64 अपराध होते हैं। और चौथा है वैष्णव या अपने गुरु, ये भी बड़ा अपराध हो सकता है। तो दुर्वास मुनि ने उनको श्राप दिया था कि आप जो है एक असुर बन जाओ, कृष्ण भगवान आपका उद्धार करेंगे। सो नल कुबेर और मणिग्रीव, ये फाइनेंस मिनिस्टर के बच्चे थे कुबेर के, तो वो मंदाकिनी गंगा में वहां ऊपर बिल्कुल ज्यादा चढ़ा के रखा था, होश में नहीं थे, निर्वस्त्र होके वहां नहा रहे थे। तो नारद जी ने देखा, अरे ये तो डबल पाप कर रहे हैं, गंगा जी में निर्वस्त्र होकर नहा रहे, तो इनका दिमाग थोड़ा रीसेट करना चाहिए। आजकल आप देखते हैं आप लोग अपना मोबाइल रीसेट करते हैं ना, तो नारद जी ने उनको 100 साल का श्राप दिया, कहा कि आप जो है वृंदावन में जो है यमलार्जुन जो है पेड़ बन जाओ और कृष्ण भगवान आपको मुक्त करेंगे। फिर वत्सासुर, मरु राक्षस के पुत्र, उसका नाम था प्रमील। वो एक बार ब्राह्मण का वेश बदलकर जो है वो आया था वैशिष्ट मुनि के आश्रम में। तो वैशिष्ट मुनि की जो गाय थी नंदिनी, वो जानती थी, वो त्रिकालज्ञ थी, तो वो समझ गई, अरे ये तो ब्राह्मण है, ये जो है ब्राह्मण नहीं है, ये असुर है। तो उसने श्राप दिया, तो बछड़ा बन जाओ, तो कृष्ण भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। इस प्रकार वो बछड़ा बने और भगवान ने उसका उद्धार किया। उसके पश्चात बकासुर, पूर्वजन्म में राक्षस हयग्रीव के पुत्र थे, उसका नाम था उत्कल। गंगा के किनारे जाजली मुनि के आश्रम के पास बैठ के मछली पकड़ के वहां सब गंदा कर रहा था। तो जाजली मुनि ने कहा, ये यहां क्यों गंदा कर रहा है, कहीं दूर जाओ। तो कह रहा था, नहीं नहीं हम यही करेंगे। तो उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम बगुले के मापी मछली खाते हो तो बगुला बन जाओ, कृष्ण भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो इस प्रकार वो क्या बन गया, बगुला बन गया। फिर अघासुर, पूर्वजन्म में शंखचूड़ का पुत्र अघा, ये बड़ा जवान था, बहुत सुंदर था, शक्तिशाली, वो सुंदर कामदेव जैसा था। तो एक बार वो क्या कर रहा था कि मलय पर्वत में वहां भ्रमण कर रहा था। तो वहां उसने अष्टावक्र मुनि को देखा और उनके अष्टावक्र मुनि 8 जगह टेढ़े हैं। तो बेचारा उनको देख के हंसने लग गया। तो अष्टावक्र मुनि ने कहा, ठीक है, तुमको बड़ा घमंड है अपने सुंदरता के ऊपर, तुम टेढ़े जो है अजगर सांप बन जाओ। तो इस प्रकार वो जो है अजगर बन गया। तो एक अजाई करके गांव है जहां अपना अभी गुरुकुल का नया गुरुकुल बन रहा है। तो ये अजाई गांव, वहां कृष्ण भगवान ने इसका वध किया था। तो ब्रह्म विवरण लीला का आपको मैंने बताया। अभी धेनु का असुर, ऐसे बताया था कि बलि महाराज के पुत्र थे, उसका नाम था साहसिक। वो पूर्व जन्म में गंधमादन पर्वत के पास वहां 10,000 स्त्रियों के साथ वो पता नहीं कौन सा डांस कर रहा था, डीजे लगा के जोर से, और उनकी आवाज गधों के माफी आवाज आ रही थी। और दुर्वास मुनि का ध्यान टूट गया। दुर्वास मुनि ने कहा, आप लोग क्यों गधे के माफी आवाज कर रहे हैं, यहां दूसरी जगह जाओ। तो लोग मान नहीं रहे थे। तो दुर्वास मुनि ने होलसेल सबको कहा कि आप लोग सब गधे बन जाओ, कृष्ण भगवान और बलराम जी आपका उद्धार करेंगे। तो इस प्रकार क्या हो गया कि ये जो है धेनुकासुर जो है साहसिक जो है वो एक गधा बना, और उसके जितने भी पार्षद थे वो भी जो है गधे बने। तो वृंदावन में 12 वनों में एक वन है ताल वन, तो वहां वो रहता था और ताल फलों का जूस निकाल के कंस को भेजता था। आगे कालिया, बताया था कि पूर्व जन्म में वेदशिर नाम के एक ऋषि थे, वो विंध्या पर्वत में वहां ध्यान कर रहे थे। तो वहां एक दूसरे ऋषि आए, उसका नाम था अश्वशिर। तो जैसे वो अश्वशिर वहां आए तो ये बड़े क्रोधित हो गए, आंख फुसकारने लग गए। तो अश्वशिर ने कहा, अरे ये तो भगवान की जगह है, आपकी जगह थोड़ी है, आप इतना सांप के मापी क्यों फुसकार रहे। तो इनको क्रोध आ गया, तुम मुझे सांप कहता है, तुम तो कौवे के मापी काँव काँव कर रहा है। तो फिर एक दूसरे ने एक दूसरे को श्राप दे दिया, उसने कहा तुम सांप बन जाओ। हाँ, वेदशिर को अश्वशिर ने कहा कि तुम सांप बन जाओ, और वेदशिर ने अश्वशिर को कहा कि तुम क्या बन जाओ, कौवा बन जाओ। तो ये विष्णु भगवान देख रहे थे इनकी लीला, भक्तों आपस में। तो उन्होंने कहा, ठीक है अभी देखो, जो भी आपने आपस में कर लिया तो मैं इसमें कुछ बीच में नहीं आऊंगा, लेकिन मैं आपकी एक मदद कर सकता हूं। तो भगवान ने देववेदशिर को कहा कि आपके सर के ऊपर मैं नाचूंगा तो गरुड़ जी से आपको मुक्ति होगी, आप बनेंगे कालिया। और अश्वशिर को कहा कि आप कौवा बनोगे, लेकिन आप बनोगे काग भूषणी, और आपको पूरे शास्त्रों का ज्ञान होगा, और आपके पास पढ़ने के लिए गरुड़ जी हनुमान जी आएंगे। तो इस प्रकार भगवान ने उनको सांत्वना दी। फिर ये जंगल की दूसरी आग, अब देखते हैं कि भांडिर वन में एक जगह है इक्षावती करके, एक वन था, वहां कंस के राक्षसों ने आग लगाया था। वैष्णव भक्तों के बीच झगड़े और मतभेद, जो आगे जातिवाद का मतभेद बनाता है। फिर इसके बाद में प्रलंबासुर, पूर्वजन्म में गंधर्व हु के पुत्र विजय ने गलती से यक्षराज कुबेर के बगीचे से फूलों को चुराया था, इसलिए वो शापग्रस्त हो गए थे। तो आप देखते हैं कि प्रलंबासुर जो है, आप देखते हैं कि एक ग्वाले के रूप में आया था, और उसने देखा कृष्ण और बलराम में कौन ज्यादा शक्तिशाली है। तो उसने देखा कृष्ण ज्यादा शक्तिशाली है, तो उसने सोचा अगर मैं पहले बलराम जी को मार दूंगा तो ये डर जाएगा, जैसे हिंदी में कहते जो डर गया। हाँ, तो इस प्रकार उसने सोचा बाद में कृष्ण को मारना आसान होगा। तो लेकिन बलराम जी ने जब देखा ये अपने आकृति में बढ़ रहा है, तो बलराम जी ने एक मुट्ठी से उसके सर में जैसे प्रहर किया तो वो वहीं मरकर गिर गए। तो आगे नंद महाराज यह सोच विचार कि हम वैष्णव द्वारा आध्यात्मिक आचरण करने का प्रयास या भक्ति में प्रगति कर सकते हैं, तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि कोई भी प्रकार का व्यसन, प्रभुपाद जी बताते हैं अगर आप यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ में घी और पानी डालेंगे तो यज्ञ की अग्नि नहीं जलेगी, तो उसी प्रकार भक्ति में हमें किसी प्रकार का व्यसन नहीं होना चाहिए। तो जैसे प्रभुपाद जी ने पहली दीक्षा दी थी अपने भक्तों को अमेरिका में, तो उन्होंने उनके रूम के बाहर एक नोटिस लिखा आज फॉर रेगुलेटरी प्रिंसिपल, तो ये हमें नियमों का जरूर पालन करना चाहिए। फिर याज्ञिक ब्राह्मणों की गलतियों का सुधार, तो ऐसे बताया जाता है कि याज्ञिक जो ब्राह्मण थे वो लोग सप्तऋषि थे, तो उनकी वो जब एक बार सप्तऋषि ये कर रहे थे यज्ञ कर रहे थे, तो क्या हो गया कि अग्निदेव ने उनके पत्नियों को छुआ। तो बताया था कि जब ब्राह्मणों को पता चला तो ब्राह्मण ने अपने पत्नियों को श्राप दिया कि आपको मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा और कृष्ण भगवान आपका उद्धार करेंगे। तो इस प्रकार ये जो याज्ञिक ब्राह्मण की जो पत्नियां थी ये सप्तऋषि की पत्नियां थी। तो यहाँ एक भातरोड करके जगह है, वहां भगवान का नाम है भातरोड बिहारी। तो जब ही कृष्ण भगवान लीला कर रहे थे तो उनकी तीव्र इच्छा थी कि भगवान कब आएंगे, हमें कब मौका मिलेगा भगवान को सेवा करने का। तो जब ही उनको पता चला, ग्वाल बालों ने कहा कि कृष्ण बलराम जी हाँ गाय चरा रहे, तो उन्होंने घर वालों की बात नहीं मानी, जो भी पकाया था वो घर में था उसको ले आए, और जब ही कृष्ण भगवान ने उनके द्वारा बनाया गया प्रसाद आस्वादन किया और कहा कि अभी आप घर चले जाओ, तो उन्होंने कहा अभी हमारे घर वाले तो वापिस नहीं लेंगे, तो कृष्ण भगवान ने कहा नहीं नहीं अभी उनका दिमाग रीसेट हो गया, अभी वो आपका स्वागत करेंगे। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि ये याज्ञिक ब्राह्मणों का जो है गलती का सुधार। फिर इंद्रदेव का मिथ्या गर्वहरण, जैसे मैंने आपको बताया कि इंद्र जो है वो अपने आप को एक बड़े भोक्ता या बड़े देवता समझ रहे थे, तो कृष्ण भगवान ने इंद्र की गलती सुधारने के लिए क्या किया था, ये लीला की थी। और हमारे आचार्य ऐसे भी बताते हैं कि कृष्ण भगवान की एक ऐसी इच्छा थी कि मेरे जितने भी पार्षद है अलग अलग रसों में शांत दास्य साक्य वात्सल्य माधुर्य, तो सबके साथ एक फैमिली रीयूनियन होना चाहिए। आप देखते हैं जैसे भारत में कोई एक ये होता है, कोई त्यौहार होता है, तो सारे परिवार के लोग सब जगह से इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे महाराष्ट्र में गणपति या बंगाल में दुर्गा। तो कृष्ण भगवान की ऐसी इच्छा थी कि हमारे ग्वाल बाल से लेके गोपियां से लेके नंद महाराज सब लोगों को एकत्र आना चाहिए। तो गिरिराज जी के लीला से हमें सोचना ये मालूम होना चाहिए कि भगवान की इच्छा थी कि हाँ ये भी एक ऐसा लीला हो जाए कि एक एक हफ्ते के लिए सब एक साथ विदाउट कोई खाना पीना खाए। तो ये लीला है इंद्र का मिथ्या गर्वहरण। फिर जंगल की दूसरी अग्नि, धार्मिक मूल सिद्धांतों की शांति भंग करना और नास्तिकतावादियों के साथ धार्मिक मतभेद का चर्चा करना। आगे नंद महाराज की सर्व से मुक्ति, तो बताया जाता है विद्याधर नामक एक बहुत सुंदर गंधर्व थे, उसका नाम था विद्याधर। तो एक बार वो हवाई जहाज से भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने अंगिरा मुनि को देखा। तो शास्त्रों में बताया था कि किसकी सुंदरता किसमें है, कोयल की सुंदरता किसमें है, हाँ उसकी वाणी में है। तो एक साधु होता है उसकी जो है सुंदरता उसके शरीर में नहीं होती, उसकी उसके वाणी में होती है, एक बहुत सुंदर श्लोक भी आता है। तो ऐसे बताया जाता है कि कृष्ण भगवान ने जब उसको पैर से स्पर्श किया तो उसको उसका अपना पूर्व रूप मिला और उसने बताया किस प्रकार वो शाप उसको मिला था। आगे शंखचूड़, ये कुछ अलग ही लीला है। अब देखते हैं कि गोलोक में एक बार राधा रानी ने अपने भाई श्रीदामा को असुर बनने का श्राप दिया था, ये कुछ कारण है लेकिन हम इसका ज्यादा डिस्कस नहीं करते। तो ये है श्रीदामा जो है वो शंखचूड़ बना था, तो जब ये कृष्ण भगवान रासलीला कर रहे थे तो गोपियों को भगा के ले जा रहा था। फिर आता है अरिष्टासुर, पूर्वजन्म में बृहस्पति के एक शिष्य थे जिसका नाम था वर्तंतु, अपने गुरु के सामने अपना पैर बिछाकर बैठने के कारण उसके गलती को सुधारने के लिए बृहस्पति ने कहा कि तुम बैल बन जाओ। तो हमें अपने वैष्णव आचरण के अनुसार जहां भी खास करके भगवान के सामने पैर खोल के नहीं बैठना चाहिए, भागवत क्लास में भी सामने पैर खोल के नहीं बैठना चाहिए, जब भी किसी बड़े यानी अपने गुरु महाराज के पास वगैरह जाते हैं तो वहां ऐसे पैरों को तुच्छ माना जाता है, अपने शरीर के जो पैर है ये इन अंगों को तुच्छ माना जाता है। तो इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए इस लीला से। तो ये जो है उसके कारण जो है वो एक असुर बन गए, बैल अर्चासुर। तो गोपियों ने कृष्ण से कहा कि अभी हम आपके साथ आदान प्रदान नहीं करेंगे, आपको सब जगह क्या करना पड़ेगा, तीर्थ भ्रमण करना पड़ेगा। तो कृष्ण भगवान ने कहा नहीं नहीं, मुझे कहीं तीर्थ भ्रमण करने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहीं तीर्थों को बुला के यहीं स्नान कर सकता हूं। तो कृष्ण भगवान ने अपने पैरों से खंडा ये किया। तो आप देखते हैं कि बहुलाष्टमी का दिन होता है, जब ही राधा कुंड का आविर्भाव दिवस होता है तो उस दिन की ये लीला बताई जाती है। फिर केशी इंद्र के एक छत्रधार थे, इंद्र के एक छत्रधार थे, उसका नाम था कुमुंद। तो एक बार वो जो है इंद्र का अश्वमेध का यज्ञ घोड़ा लेके चुरा के भाग रहा था, लेकिन मरुदगणों ने उसे पकड़ लिया, फिर इंद्र के पास ले आए। तो इंद्र ने उसको श्राप दिया था कि आप घोड़ा ही बन जाओ। तो हम देखते हैं कि पुराने जमाने में कोई कुछ श्राप देता था तो वो व्यक्ति तुरंत वो बन जाता था, लेकिन कलयुग में ये श्राप लागू नहीं होता है, अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग पता नहीं कौन से योनि में होते। तो इस प्रकार ये केशी जो है ये पूर्व जन्म में कुमुंद नाम के एक ये थे व्यक्ति थे। फिर योमासुर वाराणसी के राजा भीमरथ, एक बार जो है पुलस्त्य मुनि को उन्होंने अतिथि सत्कार नहीं किया, उनको यानी दुर्लक्ष किया। तो दुर्वास मुनि ऐसे भी आप जानते हैं कि हाँ उनको थोड़ा लगा अरे वाह ये हमें दुर्लक्ष कर रहा है, तो उन्होंने उसको श्राप दिया था राजा भीमरथ को। तो शास्त्रों में उल्लेख आता है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्णा बुक में कि एक व्यक्ति को यथाशक्ति अतिथि सत्कार करना चाहिए। हालांकि अगर कोई अपना दुश्मन भी आए तो उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं किसी दुश्मन के घर गया हूं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि कोई भी अपने घर में आता है तो उसको टेढ़ी नजर से नहीं देखना चाहिए, उसको प्रेम से जो भी आपकी यथाशक्ति है, अब कम से कम लास्ट में कुछ अच्छे वचन बोल सकते हैं। तो इस प्रकार आज आप लोगों को हमने जन्माष्टमी के उपरांत में तो हमारे अंदर जितने भी अनर्थ है, तो कलयुग में बताया जाता है कि राक्षस और असुर वो एक ही जगह, जैसे आजकल देखते हैं कि बहुत जगह अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं एक एक मोहल्ले में, है कि नहीं, सबका अपना अपना स्पीकर चलता रहता है, तो बहुत सारे हमारे अंदर अनर्थ होते हैं, मतभेद होते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं अगर हम नियमित भगवान से प्रार्थना करेंगे नियमित, तो भक्तिविनोद ठाकुर जी ने जो है वो शरणागति में बहुत अच्छे अच्छे भजन लिखे हैं, तो बताते हैं अगर हम नियमित रूप से अगर भगवान से प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा कि भगवान अवश्य हमारी प्रार्थना सुनेंगे। तो हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं हाथ जितने गंदे होंगे उतना ही ज्यादा क्या लगेगा, हाँ उसको धोने के लिए उतना ही ज्यादा क्या लगेगा साबुन, कोई अच्छा क्वालिटी का साबुन नहीं चाहिए। तो हमारा हृदय जितना गंदा है उतना ही हमें जाप करना होगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार आज जो है ये हमारे भक्ति में जो आने वाली जो बाधाएं हैं तो इनके ऊपर हमने कुछ संक्षिप्त में प्रकाश डालने का प्रयास किया, तो लगभग समय हो गया, किसी को कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा, लो श्री जन्माष्टमी महामहोत्सव की, हरे हरे कृष्णा।